اسلامی بھائیوں, آدھی رات کو ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا. والد صاحب جو کہ قریب ہی سوئے ہوئے تھے گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بیٹے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے, اے میرے لال تو کیوں روتا ہے, کیا کہیں درد ہو رہا ہے؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا, ابا جان مجھے کہیں درد تو نہیں ہو رہا, مگر کل جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ اور جمعوں کا چھٹی ہے, لہذا جمعرات کے روز استاد صاحب ہم سے پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیتے ہیں. مجھے اس وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اس دفعہ میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی اور مجھے ہفتے بھر کے اسباق مکمل طور پر یاد نہیں, کل استاد صاحب مجھے ماریں گے. یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہوں کرنے لگا. اس پر والد صاحب جو کہ حقیقتاً خوف خدا عز و جل رکھتے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بزرگوں کی کیا خوب مدنی سوچ ہوتی ہے, ہم لوگ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے. ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود رہتی ہے. وہ بزرگ گھبرا گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اس بچے کو تو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے, حالانکہ استاد کو تو چکما بھی دیا جا سکتا ہے کہ استاد صاحب میں بیمار ہو گیا تھا, کام پڑ گیا تھا, اس لیے سبق یاد نہیں کر سکتا وغیرہ. لیکن اس کے باوجود وہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے سے نیند نہیں آ رہی, اور مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے جسے کوئی چکما نہیں دے سکتا. کل بروز قیامت مجھے اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہونا ہے اور مجھے آخرت کا امتحان درپیش ہے, مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں, مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا؟ اسلامی بھائیوں, اس آیت میں ہمارے لیے عبرت کے متعدد مدنی پھول ہیں. آپ بھی غور فرمائیے, میں بھی سوچتا ہوں. ایک بچہ اس کی سوچ اور اس کے والد کی سوچ دیتی ہے. بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے اور والد قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آبدیدہ. اسلامی بھائیوں, آج اس دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جاتا ہے وہ کئی روز پہلے سے پریشان ہو جاتا ہے. اس پر ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے, امتحان سر پر ہے. راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی تیاری کرتا ہے, اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے, شاید وہ سوال آ جائے, ہر ایک سوال کو حل کرتا ہے. حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے, یاد کرنے کا وقت مل جاتا ہے, اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے, رشوت چل جاتی ہے. جو اس امتحان کو پاس کر لیتا ہے اس کو صرف ایک سال آگے بڑھایا جاتا ہے, اور جو فیل ہو جاتا ہے اس کو نہ جیل میں ڈالا جاتا ہے نہ اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں, بلکہ صرف ایک سال کی ملنے والی ترقی سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایسے دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے, کتنی کوشش کرتا ہے, نیند کشا گولیاں کھا کھا کر اپنی نیند اڑا اڑا کر ساری رات جاگ جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے جس کا نتیجہ صرف ایک سال کی ترقی ہے یا دنیا کی عارضی نعمتیں, جبکہ آخرت کے سخت ترین امتحان کے لیے اس انسان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے, ورنہ 95% مسلمان شاید نماز نہیں پڑھتے. اس وقت ہزاروں کا اجتماع ہے, ان میں ایک سے ایک دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ موجود ہوں گے. کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر ہوگا تو کوئی افسر. علماء کرام کو نہیں بلکہ عوام کو آپ 1,00,000 روپے دکھا کر یہ اعلان کر دیں کہ تم میں کوئی مجھے یہ بتا دے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں, میں اس کو 1,00,000 روپے انعام دوں گا. شاید آپ کے 1,00,000 روپے محفوظ ہی رہیں گے. دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا, مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہ رہی. आजकल तो नमाज पढ़ने वाले को भी शायद मालूम ना होगा कि वुजू में कितने फर्ज हैं। अरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, मगर मॉडर्न बेटा बाप की नमाज जनाजा पढ़ना नहीं जानता। क्यों? इसलिए कि बदनसीब बाप ने बेटे को सिर्फ दुनियावी तालीम ही दिलवाई थी। दौलत कमाने के गुर तो सिखलाए, मगर नमाज जनाजा का तरीका नहीं बताया। अगर बाप ने नमाज जनाजा सिखाई होती, कुरान पाक पढ़ना सिखाया होता, सुन्नतों का दर्स दिया होता, तो मरने के बाद बेटा इसाले सवाब तो करता। इसे तो इसाले सवाब करना भी नहीं आता। हाय हाय मरने वाले बाप की बदनसीबी। लाहौर का एक वाकया मुझे एक ईसाई भाई ने सुनाया कि हमारे एक अजीज दौलत की तलाश में पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले गए। लंदन कोई जापान चला माल कमाने, दीवाना चला सूए बियाबाने मदीना। माल के मतवालों और मदीने के दीवानों में कुछ तो फर्क है। कोई लंदन और जापान के फेरे करता और कोई मदीने के दीदार के लिए आहें भरता है। मदीने के दीवाने का जज्बा होता है कि जस्तजू में क्यों फिरे, माल की मारे मारे हम तो सरकार के टुकड़ों पे पला करते हैं। तो अपना अपना मुकद्दर है। नहीं भाइयों, सुनाचे बंदा गया माल कमाने और कमा कमा कर उसने रंगबीसी आर घर भेजा, और ये कोई नया काम नहीं था, आम है। फिर खुद जब लाहौर आया तो मुकद्दर से उसका इंतकाल हो गया। इस्लामी भाई का मजीद कहना है कि मेरा बड़ा भाई रिश्तेदारी के लिहाज से मरहूम के दसवें में मरकजुल औलिया लाहौर गया। जब घर के करीब पहुंचा तो देखा कि बाहर कुरान खानी हो रही है और देगें पक रही हैं। जब घर के अंदर गया तो ये देखकर हैरान और शशतर रह गया कि मरहूम के बीवी बच्चे फिल्म देखने में मशगूल हैं। आह, घर के बाहर इसारे सवाब और बदनसीब मैयत के घर के अंदर इर्तिकाब गुनाह हो रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसके लिए गुनाह जारिया हो गया। आखिरत का दर्द रखने वालों का दिल चलता है। नहीं भाइयों, दौर कितना नाजुक आ गया। एक नौजवान जिसकी उम्र 25 या 30 बरस हो, एक बार उसने कहा, मैंने कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में आपका बयान सुना था, उससे मुतासिर होकर मैंने दाढ़ी मुबारक की सुन्नत अपने चेहरे पर सजाई। मेरी माँ मुझे दाढ़ी नहीं रखने देती, वो धमकी देती है, अगर तूने दाढ़ी नहीं काटी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। ऐसा भाइयों, आप भी गौर फरमाइए, कभी तो तन्हाई में सोचिए, एक वक्त वो भी करीब आएगा कि आपके नाम का शोर पड़ा होगा कि फुला का इंतकाल हो गया, जल्दी जल्दी गस्ताल को दे आओ, अब गस्ताल तख्ता उठाकर आ रहा होगा। आप पर चादर उड़ी होगी, सर से थोड़ी तक मुंह बंधा होगा, दोनों अंगूठे बांध दिए गए होंगे, गस्ताल ही आपको गुस्ल देगा। आपकी औलाद आपको गुस्ल नहीं दे सकेगी, माजरत के साथ कि जब से बच्चों ने होश संभाला है आपने उनको दुनियावी इम्तिहानात की खूब तैयारियां करवाई, लेकिन इनमें दीन से दूर रखा। वो गुस्ले मैयत क्या खाक देगा? ना बेटा गुस्ले मैयत देगा, ना बेटी अपनी माँ को नहलाएगी। इसे तो खुद अपने गुस्ल की सुन्नतें भी नहीं मालूम। हाँ हाँ, माँ बाप की आखिरी खिदमत तो यही है कि उसका बेटा अब्बा को और बेटी वालिदाए मरहूमा को गुस्ल दे। ज़ाहिर है जब ऐसा होगा कि ये गुस्ल देंगे, औलाद गुस्ल देगी, तो बड़ी दिक्कत के साथ रो रो कर और सुन्नतों को मनहूज रख कर देंगे। इसी तरह कफन आएंगे, और जो कारोबारी गस्ताल है उसे आपसे क्या हमदर्दी? हो सकता है वो जूं तू पानी बहाकर कफन पहनाकर पैसे जेब में सर का कर चलता बने। अब जनाजा उठाया जाएगा, औरतें चीखेंगी। मरने वाले ने इनको ये भी मना नहीं किया था कि चीखे मार कर मत रोना, ये नौकरा हराम है। बहरहाल जनाजा उठा कर लोग चल देंगे। चाहिए तो ये था कि बेटा खुद जनाजा पढ़ाता। इसमें अगरचे इसका भी कसूर है, लेकिन बाप का भी तो कसूर है कि इसने इसको सिखाया भी नहीं था। आह, दुनिया में रहने के लिए मकानात बहुत वसीय और अरीज बनाए जाते हैं, लेकिन अफसोस कब्र सुन्नत के मुताबिक नहीं बन पाते। किसी को पता भी नहीं। अगर मैं शायद 1 करोड़ रुपए का भी ऐलान कर दूं कि मुझे कोई उठकर ये बता दे कि कब्र कितनी गहरी और कितनी चौड़ी होनी चाहिए सुन्नत, तो शायद मेरे करोड़ रुपए महफूज, शायद क्यों नहीं बता पाए कि कब्र कैसी होनी चाहिए। हम तो कब्र तो गोरकन के मतलब मोहताज है, वो जैसी कब्र टिका दे। हमने कभी सोचा भी तो नहीं ना, हमने
तो प्लाट पर प्लाट अलॉट करने की फिक्र है कि ये इसकी जमीन दबा ली, उसकी जमीन खा गई, रिश्वतें देकर, झूठ बोलकर, गबन कर इस तरह मतलब अपने हराम हलाल की तमीज उठाकर हमने तो जायदादें बनाई है, हमें क्या पता, चाहे हमें तंग कपस कब्र में फांस कर जबेड़ दिया जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, माज अल्लाह ये सोच नहीं। तो मेरे साईं भाइयों, कब्र कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची होनी चाहिए, आज तक इस पर गौर नहीं किया। अफसोस, सद अफसोस, सद हजार अफसोस, सद लाख, सद करोड़ अफसोस। ठीक है, हमें हम पड़े भी नहीं होते कब्र कैसी, बल्कि आजकल तो सीमेंट की दीवारें कब्र में बना दी जाती है, उसी में हम अपना मैयत उतार देते हैं। हालांकि आग से पकी हुई ईंट कब्र में लगाना मना है, बाहर शरीयत पड़े आपको ये सब बातें मालूम हो जाएंगी। तो ये सब सीखने के लिए काफिलों में सफर करोगे इंशाल्लाह सब आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि वो कब्र जिसमें कयामत तक रहना है, उसके बनाने और उसको किस तरह बनाया जाए इसका हमें नहीं। तो ये अर्ज कर दूं कि अगर सीमेंट की दीवारें बनी हुई है कब्र में, तो उस पर मिट्टी की लिपाई कर दी जाए और इतनी लिपाई करें कि सीमेंट नजर ना आए। और इसी तरह जो सीमेंट के स्लैब तो सब में लगाए जाते हैं, दावत इस्लामी वाले बारा ये करते होते हैं कि सीमेंट की स्लैबों के अंदर का जो हिस्सा है, जो हिस्सा मैयत की तरफ रखा जाएगा, ऊपर स्लैबें जो रखी जाती है, तो उस अंदरूनी हिस्से पर मिट्टी लीप दी जाए पानी वाली करके, तो फिर यानी कि वो चारों तरफ मिट्टी मिट्टी रहेगी और वो सुन्नत के खिलाफ नहीं कहलाएगा। तो अगर कभी जरूरत हो तो आप भी ऐसा कर लिया कीजिए। बहरहाल, रोशन मुस्तकबिल का हर एक को एहसास है, मगर कब्र की रोशनी का किसी को ख्याल नहीं, लोग तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि देखा जाए तो कब्र भी मुस्तकबिल में शामिल है, घर में रोशनी का सब एहतमाम रखें, मगर कब्र की रोशनी की फिक्र किसे है।
मुश्किल में हो सरकार में मुश्किल।